समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7:30 हुए हैं। आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल पर प्रस्तुत है न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आज आपके साथ हूं मैं कनकलता
और मैं नवनीत।
नवनीत, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से।
यस कनकलता, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। We bring you a forever exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein in the next half an hour we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 6th of October. So let's begin with the headlines. In Sikkim, death toll following devastating flash flood has mounted to 19. State Disaster Management Department has said 26 are injured while 103 are reported missing, including Army personnel. State Chief Secretary V.V. Pathak convened a series of meetings with the representatives of the Chamber of Commerce, Wholesale Retailers, Pharmacy Association, IOC representatives, LPG dealers and distributors, Petrol Pump Owners and Taxi Driver Association at Tashaling Secretariat yesterday. The Chief Secretary directed the NHIDCL to open the route for small and heavy vehicles through Lava and Reshi checkposts at the earliest. ED NHIDCL assured that the route will be cleared by this morning. The Transport Secretary was directed for route diversion for small and heavy vehicles after ensuring clearance of the route.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन किया और उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय बनाया और जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया।
The Ministry of Civil Aviation has said that citizens can now become drone pilots with any government-issued identity and address proof. The Ministry has notified the new Drone Amendment Rules 2023 for drone pilots. After the amendment, it has now been made clear that a government-issued proof of identity and a government-issued proof of address like voter ID, ration card or driving license can now be accepted to apply for a remote pilot certificate. If the drone pilot does not have a passport, the rule is effective from the 27th of last month.
भारत ने देश में कनाडा के राजनयिकों की संख्या कम किए जाने की बात दोहराई है। भारत का कहना है कि दोनों देशों में राजनयिकों की समान संख्या होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में कनाडा के राजनयिकों की अधिक संख्या और अंदरूनी मामलों में उनके लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए भारत ने कनाडा में भारत के राजनयिकों की समान संख्या की मांग की है।
इन अरुणाचल प्रदेश द स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग एट द स्टेट सिविल सेक्रेटेरिएट इन ईटानगर यस्टरडे। In the first sitting, the State Cooperative Development Committee approved the district-wise plan of setting up of 491 cooperative societies across the state over the period of next 5 years. These include 150 large-sized multi-purpose cooperative societies, 157 dairy cooperative societies and 184 fisheries cooperative societies. The meeting was chaired by the state's Chief Secretary Dharmendra. The committee also approved the setting up of 500 metric ton grain storage plan by NAMSAI, large-sized multi-purpose cooperative society on a pilot basis. During the meeting, Mr. Dharmendra also reviewed the steps taken by the Department of Cooperation in implementing various schemes and initiatives of the central government in the state.
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के आरंभिक मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया है। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर जीत के लिए 283 रन का लक्ष्य दिया, जिसे न्यूजीलैंड ने 36 ओवर और 2 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विश्व कप में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला होगा।
स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस टू ऑग्यूमेंट क्लीनलीनेस एंड एलिवेट द वर्क एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस इज इन फुल स्विंग। द कैंपेन इनिशियली हैड अ प्रेपरेटरी फेज फ्रॉम 15 सितंबर विद एन एम टू आइडेंटिफाई टारगेट्स टू बी अचीव्ड ड्यूरिंग द कैंपेन पीरियड। द मेन कैंपेन स्टार्टेड फ्रॉम 2 अक्टूबर एंड विल लास्ट अप टू 31 अक्टूबर। In Punjab, currently the paddy harvesting season is on full swing. The state government ran a long campaign to create awareness among farmers about better management as well as mixing of stubble in the fields instead of burning. But despite this, the incidents of stubble burning are on the rise in the state. There is a complete ban on stubble burning in the state, yet these cases of stubble burning are increasing day by day. In Chhattisgarh, the final voter list for the upcoming assembly elections has been published and displayed at all polling stations across the state. After a special campaign to register new voters in Chhattisgarh, the state has seen an increase of over 7,19,000 voters. The current voter count in the state is now over 2.3 crore. Chhattisgarh stands out as one of the states in the country where the number of female voters surpasses that of males. According to the recently released voter list, there are over 1.2 crore registered women voters in the state, while male voters number around 1.1 crore.
और अब एशियाई खेलों की ताजा खबरों की जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं सिद्धार्थ सिंह।
धन्यवाद कनक। भारत का एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी है और आज भी भारत को कई और पदकों की उम्मीद होगी। तीरंदाजी में अब से कुछ देर पहले महिला रिकर्व टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने 11वें ओवर में 5 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। कबड्डी के सेमीफाइनल मैच में महिला टीम का सामना नेपाल से हो रहा है। आज सबकी निगाहें हॉकी के महामुकाबले मैच पर लगी होंगी, जिसके फाइनल में भारत का सामना जापान से होगा। बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय और डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सेमीफाइनल मैच में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। शतरंज की बात करें तो पुरुष और महिला टीम के अंतिम मैच के मुकाबले खेले जाएंगे। कुश्ती में महिला और पुरुष फ्री स्टाइल में भारतीय पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। इससे पहले कल 12वें दिन भारत ने अपना शानदार सफर जारी रखते हुए 3 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत 21 स्वर्ण 32 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 86 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
एशियाई खेलों की ताजा खबरों के बाद नवनीत अब समय हो चुका है आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरों को जानने का। तो आपके पास चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद की क्या खबरें हैं?
यस कनक, लेट्स हैव अ लुक एट न्यूज अपडेट्स फ्रॉम चेन्नई। Officials of the Income Tax Department yesterday conducted search at about 40 places linked to DMK MP S. Jagat Rakshakan in Chennai and suburban areas. More than 50 vehicles, investigators arrived at the location in tiny teams and began their simultaneous searches. More than 150 armed reserve personnel have been posted in places where the searches are being held. The properties of Sri Balaji Dental College and Hospital in Pallikaranai, Savita University in Kuthambakkam, and his office in T. Nagar and Velachery are among the places searched by the IT officials. In some more news from Chennai, Anbil Mahesh, the state's Minister of Education, has announced a pay increase for the 10,359 part-time teachers from 10,000 to Rs. 12,500. Additionally, the government will roll out a medical insurance program with a cap of rupees 10 lakh. Amidst protests and a sit-in strike, the minister also announced the formation of a three-member committee to consider the demands of the agitating secondary teachers and make recommendations to the government on Wednesday. The recommendations of the committee will be finalized within a period of 3 months and a report will be submitted. And some update from Bengaluru. The delivery of number metro coaches for Bengaluru was discussed in a video conference held yesterday by Bengaluru South MP Tejasvi Surya. BMRCL MD Anjum Parvez, Titagarh Rail Systems Limited MD Umesh Chaudhary and representatives from CRRC firm. The CRRC has confirmed that two car bodies for metro rails will arrive in Bengaluru by November, while a CRRC representative said the company would need more time to supply two additional car bodies. Surya intervened and requested them to supply it by the end of November. The Bengaluru South MP who inspected the yellow line yesterday assured Titagarh Rail Systems Limited that he would request the centre to provide requisite visas and governmental clearances for the Chinese engineers assisting in the project. CRRC Nanjing Puzhen Company Limited was awarded the contract to supply 216 coaches in 2019. Their domestic production partners, Titagarh Rail Systems Limited, are manufacturing 75% of the coaches. Surya's intervention were key in helping the BMRCL meet its deadline of getting the yellow line operational by February 2024. And now some updates from Telangana. In Telangana, BJP President JP Nadda will lead the party's state council meeting to be held in Ghatkesar near Hyderabad later today. The meeting is expected to focus on discussing election-related matters and devising strategies for the upcoming polls. Several high-ranking party officials, including BJP General Secretaries B.L. Santosh, Tarun Chugh, Sunil Bansal, Bandi Sanjay, are expected to attend the crucial gathering. Meanwhile, Union Tourism Minister and BJP State President G. Kishan Reddy informed that Home Minister Amit Shah is set to address a public rally in Adilabad on 10th of this month. And over to you, Kanak.
हाँ, दिल्ली और मुंबई की खबरें जो मेरे पास है उनमें शुरुआत करती हूँ मैं दिल्ली से. दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया है. इससे पहले श्री सिंह को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत में पेश किया गया था. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल एंटी डस्ट अभियान को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक की. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान के तहत 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाएगी और इस अभियान के तहत पूरी दिल्ली में निगरानी के लिए 13 विभागों की करीब 600 टीम तैनात की गई है. श्री राय ने बताया कि इस दिशा में कार्य करने के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन पोर्टल को पहले शुरू किया गया था और अब इस पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक सभी निर्माण स्थलों का पंजीकरण करना अनिवार्य है. इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सक्रिय कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन साइट्स पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएं. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सभी पंजीकृत साइट्स की मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कल अपनी सभी मेट्रो लाइनों पर व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग प्रणाली के विस्तार की घोषणा की. डीएमआरसी की इस पहल का उद्देश्य सभी दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को आसान बनाना है. यात्री अब व्हाट्सएप नंबर 9650855800 पर हाई टेक्स्ट के साथ एक संदेश भेजकर यात्रा टिकट खरीद सकते हैं. व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग सेवा की मुख्य विशेषताएं ये है कि उपयोगकर्ता एक बार में अधिकतम 6 QR टिकट ले सकते हैं. व्हाट्सएप के जरिए सभी लाइनों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच और एयरपोर्ट लाइन के लिए सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक टिकट बुक कराए जा सकते हैं. भुगतान के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेन देन पर मामूली सुविधा शुल्क लिया जाएगा, जबकि एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई आधारित लेन देन पर कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा. डीएमआरसी के अनुसार व्हाट्सएप टिकटिंग में टिकट रद्द करने की अनुमति नहीं है. दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में कल से स्वास्थ्य मेला चल रहा है। इस मेले का आयोजन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर कर रहा है। ये मेला इस महीने की 10 तारीख तक चलेगा। इसमें लोगों को नेत्र जांच, दंत रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर और मधुमेह रोग की निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उन्हें होम्योपैथी और आयुर्वेद की निःशुल्क ओपीडी, योग, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और जीवनशैली प्रबंधन का निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत कल दिल्ली से करीब 800 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को लेकर यात्रा ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। इन तीर्थयात्रियों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात के दौरान कहा कि दिल्ली से रामेश्वरम की दूरी सबसे ज्यादा होने की वजह से यहां के लिए यात्रा ट्रेन की मांग अधिक रहती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2.5 दिन की यात्रा के बाद तीर्थयात्री 2 दिन मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। पहले दिन तीर्थयात्री रामेश्वरम मंदिर जाएंगे और अगले दिन मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद उसी रात ये ट्रेन वापस दिल्ली के लिए रवाना होगी। और अब मुंबई की खबर। अग्निवीर के लिए भारतीय सेना की भर्ती रैली का दूसरा चरण 1 से 7 नवंबर तक कलीना के मुंबई यूनिवर्सिटी ग्राउंड में निर्धारित किया गया है। एक बयान के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल द्वारा एडमिट कार्ड भेज दिए गए हैं, जो इस साल अप्रैल में आयोजित ऑनलाइन सीई में सफल रहे हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने बीमा कंपनियों से 8 दिन के भीतर किसानों का बीमा बकाया चुकाने या कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। गुरुवार को मुंबई में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा खरीफ 2020 सीजन के दौरान उनके नुकसान के लिए दावा किए गए 224 करोड़ रुपए का बकाया अब भी लंबित है।
Let's have some look at the weather updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad now. Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 26 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 21 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is also expected to have partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius. Over to you, Kanak, for some more weather updates.
दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहां आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो जगहों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अब बात आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जो इतिहास में दर्ज हैं।
Yes, Kanak. Today is World Cerebral Palsy Day. The day is celebrated every year on the 6th of October. This day serves as a platform to raise awareness about CP, support those living with the condition, and advocate for greater inclusion and understanding. The theme for this year's World Cerebral Palsy Day is Together Stronger. In 1963, Harvey Ball, a graphic artist from Massachusetts, USA, created the smiley face symbol we've all come to know. Kanak, we frequently use the emoji, smiley emoji in our messaging and WhatsApp these days. So let's inform our listeners about some interesting fact about that emoji. The popularity of the symbol exploded into the world of popular culture. The popularity of the smiley face emoji increased with the expansion of the internet and its use as an emoji. On 6th October 1999, World Smile Day was officially adopted.
1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खड़गवासला में आज ही के दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की आधारशिला रखी थी और 1957 में सोवियत संघ ने नोवाया ज़ेमल्या में परमाणु परीक्षण किया था।
On this day in 1921, International PEN, a worldwide association of writers, was founded in London. And also in 1927, the first independent film processing laboratory, Atmanan Laboratory, was set up by Narayan Rao alias Dhanji Bhai K. Desai at Bombay.
2006 में संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति रक्षकों को बल प्रयोग का अधिकार दिया और 2007 में जेसन लुईस ने अपने बूते पूरी दुनिया की परिक्रमा की। जहाज से लगाई गई इस परिक्रमा को पूरा होने में 13 वर्ष का समय लगा। उन्होंने अपनी यात्रा जुलाई 1994 से लंदन के ग्रीनविच से शुरू की थी।
एंड ऑल्सो इन 1990 सोलर पोलर ऑर्बिटर यूलिसिस वाज लॉन्च्ड ऑन दिस डे।
और अब उन्हें याद करने का समय है जिनकी आज पुण्यतिथि है या जिनकी जयंती या जन्मदिन है। तो शुरुआत नवनीत से करते हैं।
यस कनक, टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन। ही डाइड इन 1892। ही वाज एन इंग्लिश पोएट। ही वाज द पोएट लॉरिएट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन। In 1829, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first pieces called Timbuktu. A number of phrases from Tennyson's work have become commonplace in the English language, including nature red in tooth and claw, it's better to have loved and lost than never to have loved at all, and knowledge comes but wisdom lingers. He is the 9th most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations.
आज जाने माने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद लक्ष्मीमल सिंह भी की पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी के वैश्वीकरण और हिंदी के उन्नयन की दिशा में सजग, सक्रिय और ईमानदार प्रयास किए। वे भारतीय संस्कृति के राजदूत, ब्रिटेन में हिंदी के प्रणेता और हिंदी भाषियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। जैन धर्म के इतिहास और संस्कृति के जानकार के रूप में मशहूर लक्ष्मीमल सिंघवी ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से अनेक हिंदी में हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था।
And Kanak, most of our listeners must have visited Chandigarh, but not many know the history behind the architect of the beautiful city. So let's inform our listeners about that. Today is the birth anniversary of Le Corbusier, French Swiss architect and city planner who was born in France in 1887. Le Corbusier is considered as the most important architect of modern age. He built many groundbreaking buildings around the world and drew up numerous important urban development plans. Le Corbusier prepared the master plan of the new city of Chandigarh and subsequently designed the capital complex, the city center and the museum complex. 17 different projects of the Swiss-French architect Le Corbusier were included in the UNESCO World Heritage List of internationally renowned architectural sites in 2016.
और आज ही साहित्यकार तथा प्रसिद्ध समाजसेवी दत्तो वामन पोतदार की पुण्यतिथि है। हिंदी को महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी भाषा बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। इन्हें महाराष्ट्र का साहित्यिक भीष्म भी कहा जाता है। इस कार्य के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा करने का दृढ़ निर्णय लिया था। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं मराठे आणि इंग्रेज, मराठे गद्याचा इंग्रेजी अवतार। और आज ही सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम शिल्पकार नाना साहेब की भी पुण्यतिथि है। जब मई 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की ज्वालाएं उठी, तब नाना साहेब भी राष्ट्र मुक्ति संघर्ष में कूद पड़े थे। उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया। कई महीने तक इस पर आजादी का झंडा लहराता रहा। और आज ही भारतीय सिनेमा में और छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार अरविंद त्रिवेदी की भी पुण्यतिथि है। दूरदर्शन पर आने वाले प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में उन्होंने लंकापति रावण का किरदार निभाया था और काफी लोकप्रिय हुए थे। आज भी लोगों को उनकी निभाई गई भूमिका याद है। अगर तुमने नवनीत रामायण सीरियल देखा होगा तो तुम्हें याद होगा उनके जो लंकेश कहते थे, तो लोगों के रोंगटे खड़े जाते थे। उनकी भूमिका इतनी यादगार रही है कि लोग आज भी उनकी नकल करना चाहते हैं, जो भी रावण का किरदार निभाता है। और अब बात करते हैं जयंती की। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आज भारत के महान खगोल वैज्ञानिक मेघनाथ साहा की जयंती है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान है। उनके द्वारा प्रतिपादित तापीय आयनीकरण के सिद्धांत को खगोल विज्ञान में तारकीय वायुमंडल के जन्म और उसके रासायनिक संगठन की जानकारी का आधार माना जा सकता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अनुसंधानों का प्रभाव दूरगामी रहा और बाद में किए गए कई शोध उनके सिद्धांतों पर ही आधारित थे। साहा समीकरण ने सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और ये समीकरण तारकीय वायुमंडल के विस्तृत अध्ययन का आधार बना। उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का फेलो चुना गया था और उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता भी सौंपी गई थी। भारत सरकार ने कैलेंडर सुधार के लिए जो समिति गठित की थी उसके अध्यक्ष भी मेघनाथ साहा ही थे। उन्होंने 5 महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी रचना की थी।
Yes, Kanak, and it was in 1920 that he developed the thermal ionization equation, as you just mentioned.
और आज हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और मैं कहूंगी सबसे हैंडसम अभिनेता जो थे विनोद खन्ना का जन्मदिन का जयंती है।
हम तुम्हें चाहते हैं मरने वाला कोई मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं।
जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा
विनोद खन्ना ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नकारात्मक किरदारों से की, बाद में वे मुख्य धारा के हीरो बन गए। उनकी यादगार फिल्में हैं मेरे अपने, कुर्बानी, पूरब और पश्चिम, रेशमा और शेरा, हाथ की सफाई, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, दयावान, मेरा गांव, मेरा देश और भी कई फिल्में हैं जिनके नाम बताना संभव नहीं है। विनोद खन्ना के बारे में एक रोचक तथ्य है कि वो बचपन में बेहद शर्मीले थे और जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें एक टीचर ने जबरदस्ती नाटक में उतार दिया और तभी से उन्हें अभिनय करना अच्छा लगने लगा। विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाए, लेकिन अंत में विनोद की जिद के आगे उनके पिता झुक गए और उन्होंने विनोद को 2 साल का समय दिया। विनोद ने इन 2 सालों में मेहनत करके फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। विनोद खन्ना को सुनील दत्त ने साल 1968 में फिल्म मन का मीत में विलन की भूमिका दी। इस फिल्म से उन्हें अच्छी पहचान मिली।
धीरे से झूलू मैं गालों को, चूमू मैं भीगे से बालों को, बोलो ना 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 करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, ना ना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार।
आज हास्य अभिनेता संजय मिश्रा का जन्मदिन है। 2015 में इन्हें आंखों देखी के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया। वे हाल ही में टोटल धमाल में दिखाई दिए और जिन्हें कॉमेडी मूवी देखने का शौक है उन्हें पता होगा कि गोलमाल फन अनलिमिटेड में भी संजय मिश्रा थे।
मैंने कहा तीनों लड़के काम पे लग गए, माधव लक्की लक्ष्मण इन तीनों का काम ही यही है नकली भूतों के राम गोपाल वर्मा पैदा करना।
अंदर सच्ची का भूत है
गोपू, तू रात में जागता नहीं है लेकिन इन तीनों ने तुझे उल्लू बनाया। उल्लू लू उल्लू
नहीं, 17 दिन पहले जो लड़की मरी थी उसका भूत है।
अरे गोपाल बेटा, मैं अभी अंदर जा करके तेरा वहम दूर करता हूँ।
और अब वक्त हो चुका है आपसे अनुमति लेने का। इसके साथ ही कनकलता और नवनीत सिंह को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की अनुमति। पर आप सुनते रहिए हमारा चैनल और अब प्रस्तुत होगा थोड़ी देर में समाचार। नमस्कार
नमस्कार।